तो आप देखें, हमने पहले भी पढ़ा है कुराने पाक में, अंबिया ने अपनी दावत के लिए कैसे शुरू करते थे, या कौमी कह के, ये नहीं कहते थे वो बदबख्तो, ओ काफरो, ओ मुशरिको, ओ नाफरमानो, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये नहीं करते थे। इसलाह का काम शुरू ही इससे होता है कि मौजतल हसना से, अच्छी तरह से नसीहत करना, और आपके अंदर खैर ख्वाही होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने इल्म का जोम, अपने इल्म का मुझे इतना जोम हो, अपने इल्म की यानी एक उस मेरे दिमाग में यह है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, अब मैं जरा रोब झाड़ू इनके ऊपर, मैं जरा इनको सीधा करती हूँ। ये सीधे क्यों नहीं होते, इन्होंने नहीं ऐसे क्यों, ये तो सोचे। कदारी का मन अल्लाह अलैकुम, नहीं कजाली का कौन, तुम इस तरह से कुछ आयत है, मुझे भूल गई, कि तुम भी इसी तरह थे, अल्लाह ताला ने फरमाया, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम भी ऐसे थे। तो अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अगर आज उसने हमें कोई राह दिखा दी, हिदायत की, तो ये उसका एहसान है। इस चीज को जहन में रखा करें कि मैं भी ऐसी ही थी, अल्लाह ना मुझ पे एहसान करता तो मैं भी इन्हीं में होती। फिर किसी से नफरत, हकारत, किसी को नीचा देखना, किसी को बेअकल समझना, किसी को ऐसा रवैया किसी के साथ रखना कि ये तो मेरे से कमतर है और मैं बहुत नेक हूं, जब भी जहन में ये आएगा, खैर ख्वाही तो कहीं दूर ही चली जाएगी, बस अपनी किबर और अपना ही नेकी का जोम दिमाग पे छाया होगा, क्या इसलाह होगी। खैर ख्वाही, मेरा दिल करता है कि बस सारे अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह के फरमा बरदार बन जाए, मैं खुद भी और बाकी भी, तब तो कोई बात समझ आती। और बस अपना ही अगर आपने रोब झाड़ते रहना तो फिर इसलाह नहीं हो सकेगी। तो आजकल अव्वल तो दावत और इसलाह की तरफ और अमर बिल मालूम नहीं है, उनके तब ध्यान ही नहीं रहा लोगों का। लोग कहते हैं जी छोड़ो, जो जो करता करता रहे, हमें क्या, ठीक है। और अगर कोई इस तरफ आ ही जाता है तो फिर क्या, बहस मुबासे, लड़ाई झगड़े, मुखालफतें, इल्जाम तराशियां, फिक्रे कसने, दूसरे की तहकीर, तौहीन, ये बस इसको समझते हैं हम दावत का काम कर रहे हैं, उनके मजाक उड़ाने, हंसना, उनके ऊपर लतीफे बनाने। आज देखें लोगों ने दूसरों के ऊपर कितने लतीफे बनाते हैं, दूसरे फिरकों के ऊपर, दूसरे मजाहब के लोगों के ऊपर, उनके ऊपर कैसी इल्जाम तराशियां, कैसी उनके साथ मुखालफत का रवैया रखते, इससे क्या दावत का काम होगा, इसी खिलाफ सुन्नत काम है। इसीलिए देखें ना, कोई फायदा हासिल नहीं होता। हम अगर जितने मर्जी मुखालफतें कर लें, बहस कर लें, झगड़े कर लें, उनको गालियां दे दें, उनके मजाक उड़ा लें, उससे इस्लाम की क्या खिदमत हो रही, वो नफरत करके भागेंगे और क्या करेंगे। इसीलिए कहा हिकमत और मौजतुल हसना, और फिर मुजादला कहा, वजादिल हम बिल्लती या आसन, हत्ता के मुजादला भी करना है ना, अगर आपने बहस भी करनी है तो उसके साथ कंडीशन लगा दी गई कि आसन तरीके के साथ हो, क्योंकि जब बहस शुरू होती है तो हर तरफ से गुस्से में आ जाते लोग, नतने फूलने लगते हैं, आस्तीने चढ़ा लेते हैं, उससे की वजह से ये भी नहीं समझ आ रही थी बोल क्या रहे, बाज दफा हाथापाई हो जाती, बाज दफा ये हालात हो जाते हैं कि पैर पटकते हुए हम वहां से निकल जाते हैं, उसके बाद उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, कता कलामी कर लेते हैं, भाई भाई में ऐसा हो जाता है, किसी मजलिस में बैठे हुए इतना गुस्सा आ गया, फिर उसके बाद इतनी तलख कलामी हुई कि एक दूसरे की शक्लें देखने से भी गए। ये कौन सा इस्लाम की खिदमत और दावत का काम हो रहा है, एक मिसाल भी लाके ऐसी दिखाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से, एक दिखाएं। बड़े बड़े काफिर आते थे, बड़े बड़े काफिर बड़ी बड़ी बातें ऐसी बुरी करते थे कि कलेजा छलनी हो जाए, इतना तहम्मुल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आज तो अपने मुसलमान ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम कैसे कर रहे होते, हमारा तरीका कैसा होता है। तो हमने इल्मी रोब नहीं झाड़ना, हमने दूसरे के ऊपर गलबा नहीं पाने का कर रहा है कि मैं बस, मैं इसलिए कहूँ कि बस मैं गालिब आ जाऊं, नहीं, असल में तो क्या होना चाहिए कि दूसरा भलाई की तरफ आ जाए, ये जहन्नुम से बच जाए। से बिल्कुल चेंज हो जाएंगे रवैये। और फिर इसीलिए फिर अगर हम ये तरीका नहीं अपनाते ना, तो फिर बुग्स भी आती हैं, देखें फिर लड़ाइयां भी हो जाती हैं, फिर एक दूसरे से दिल भी खराब हो जाते हैं, फिर इंसाफ की बात भी नहीं इंसान कर पाता। तो बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को, जो हमें असूल बताएगा ना, इनको समझें, और फिर इतना दिल पे बातें लेके ना बैठ जाएं, इतने टची हो गए कि उसके बाद हमने अब किसी को कहना ही नहीं, क्योंकि फलाने ने मुझे ये कह दिया। हाँ, इमाम मालिक ने फरमाया कि इल्म में झगड़ा और जिदाल नूरे इल्म को इंसान के कल्ब से निकाल देता है। तो जब आप झगड़े में पड़ जाएंगे ना, तो फिर आप बात को मौसर तरीके से कह ही नहीं सकेंगे। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम ऐसा किरदार रखें, ऐसे तरीका अपनाएं। तो इसमें एक तो बात ये कि एक तो है फॉर्मली दावत का काम करना, फॉर्मली जैसे आप एक दाई के तौर पे जाते हैं और आप लोगों को बुलाते हैं, लेकिन एज उम्मत मुस्लिमा के फर्द के हर इंसान एक दाई है। चाहे वो मुंह से बोल के दावत नहीं भी दे रहा, लेकिन उसका किरदार, उसका अखलाक, उसकी बातचीत, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसका लिबास, ये सब दूसरे को मैसेज देते हैं कि मैं एक अल्लाह का फरमाबरदार, एक अल्लाह को मानने वाला हूं। वो हर जगह जिधर जॉब करता है, जिधर रहता है, जिनसे मिलता जुलता है, जिन मजलिसों में बैठता है, जहां पे भी वो होता है, उसका, उसके अल्फाज नहीं भी हैं, और उसका हर एक्शन जो है ना, वो लोगों के लिए दावत का काम कर रहा होता है। ये हमें बात समझनी चाहिए। हम सोचते हैं ना कि ये कोई मौलवियों का काम है, ये कोई इमामों का काम है, ये फलां का काम है। नहीं, ये हर बंदा दावत का काम कर रहा है। कितने इमाम होंगे एक शहर में, लेकिन बहुत सारे मुसलमान होंगे। लोग इमाम को नहीं जाके देखेंगे कि वो इमाम क्या करता है, लोग हर मुसलमान को देखते हैं कि मेरा कुलीग मुसलमान है, मेरा क्लास फेलो मुसलमान है, मेरा हमसाया मुसलमान है, वो उससे कुछ सीख रहा होगा, वो उससे इस्लाम का कोई मैसेज ले रहा होगा। तो कुल हाजी सबीले उदू इलाल्लाह, ये मेरा रास्ता है, इसकी तरफ दावत हो तो इंसान उदू इलाल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत हो। हर इंसान अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, हर मुसलमान अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बन जाता है जब वो इस दीन में एंटर होता है। अगर वो शराब पी रहा है ना, तो वो भी दूसरे को मैसेज दे रहा है कि ये है जो इस्लाम के अंदर सही है, एक मैसेज है उसका। वो क्या मैसेज लेता है कि मुसलमान तो शराब भी पीते हैं, मुसलमान औरतें तो बेपर्दा भी पहनती हैं, मुसलमान तो झूठ भी बोलते हैं, मुसलमान तो बेईमान भी होते हैं। आप एक मैसेज दूसरे को पहुंचा रहे हैं कि इस्लाम ऐसा है। वो इस्लाम बाद में पढ़ेगा, पहले वो आपको पढ़ता है, पहले वो हमारी शख्सियत से लेता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, खास उल खास, हर जगह ही वैसे तो होना चाहिए, लेकिन खास उल खास जब आप एक गैर मुस्लिम माशरे में रहते हैं, तो आपकी हर चीज जो है ना, वो दूसरों को मैसेज दे रही है, दावत का काम कर रही है। दावत तो देखिए तकरीरें करने से नहीं सिर्फ होती कि जी लेक्चर हो रहा है, दावत का काम हम कर रहे हैं, खुतबे दे रहे हैं, हम दर्स कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, वो तो दावत है ही है, लेकिन दावत इस तरह से भी है। तो हम इस चीज के ऊपर करके जब हम दर्स देते हैं या किसी को खास तौर पे बुलाते हैं या तो तकरीर करते हैं, तब तो फिर भी हम संभल के कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा बाकी जिंदगी के अंदर जो भी हमारा किरदार, अखलाक, मामलात, सब चीजें हैं ना, ये सब ऐसी हैं जहां पे हम केयरलेस हो जाते हैं, यहाँ पे हमें भूल ही जाता है कि दूसरा बंदा हमसे कुछ ले रहा है। ये हमारी सब चीज या तो दावत इल्लाह है, यहाँ फिर लोगों को भगाने वाली है, दावत इला गैर इल्ला है। लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं किस चीज से, या तो मेरी अच्छाई से, मेरी सच्चाई से, मेरी नमाज से, मेरे रोजे से, मेरे कुरान से, मेरी नर्म गुफ्तगू से, मेरी मेरे मामले से उसके साथ, मेरे एहसान के साथ, मेरे मोहसिन होने से, या फिर वो मुतासिर हो रहे हैं मेरे झूठ से, मेरी शोखियों से, मेरी शो ऑफ से, मेरी आवारागर्दी से, मेरी दीनदगी से, दूरी से, मेरे धोखे से, इससे मुतासिर हो रहे हैं। किसी से तो हो रहे हैं ना, हर एक इंसान दूसरे को देख रहा है, कहीं तो उसको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है ना, तो क्या ले रहे हैं वो मेरे से। तो ये पूरी जिंदगी है हमारी जो दावत दे रही है लोगों को, पूरी जिंदगी, या तो अल्लाह की याद की तरफ या अल्लाह के रास्ते से हटाने की तरफ। और ये ना कहे मैंने तो, मैं तो दावा का काम करती नहीं, नहीं भी करती, आपका हो रहा है खुद बहुत, हो रहा है, आप मुसलमान जो हो रहा है खुद बहुत, लिहाजा बी वेरी केयरफुल। ये ना हो कि कयामत के दिन यही लोग कहें कि या अल्लाह इसको पता था, इसको पता था और इसने हमारे सामने ये इस्लाम का नमूना रखा था, इसकी वजह से हम इस्लाम से दूर हुए थे, ये धोखेबाज थी, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी। इसी तरह मुसलमानों को भी दीन की तरफ दावत देने के लिए आपका किरदार, अखलाक, आपकी जिंदगी एक दावत का काम करती है। आप चाहे कॉन्शियसली नहीं भी कर रहे, अनकॉन्शियसली भी, आप जब कुरान पढ़ने वाले, या आप कोई स्काफ लेने वाली हो गई, या आप कोई नेक नजर आती हैं, या आपकी बातें कुछ ऐसी होती हैं, तो लोग जरूर आपसे कुछ ना कुछ लेते हैं, वो आपको देखते हैं, फिर वो चाहे आप ना कहें, कुछ भी ना उनको कहें, तब भी वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं आपसे, तब भी वो कहते हैं कि ये देखो, ये तो दीन को समझती है, ये कर रही है, तो इसका मतलब सही होगा, ये तो कुरान पढ़ती है, अगर ये इस तरह का इसका ओढ़ना पहनना है तो सही ही होगा, इसकी ऐसी डीलिंग है तो फिर सही होगी ये डीलिंग। या फिर वो ये कह सकते हैं कि देखो ये ऐसा करती है, ऐसे दीन से तो हम बाज रहे, हमें नहीं इस तरह का दीन पढ़ना, हमें नहीं इस तरह का कुरान पढ़ना, देख लो ये तो खुद ऐसे होते हैं, ये तो ये खुद ये कर रहे हैं। वो आपसे कुछ ऐसी भी चीज ले सकते हैं, भाग भी सकते हैं दूर अल्लाह की किताब से, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के दीन से, नेकी की बात से। इसलिए ही आजकल देखे ना, बाज कोई कोई होगे चंद एक, लेकिन काली भेड़ें थी इनमें भी, जो कहीं कहीं मस्जिद का इमाम था, कहीं कोई मुदर्रिस था, कहीं कोई हाफिज था, उन्होंने कुछ गलत काम ऐसे किए, उसके बाद लोगों को मौका मिल गया, उनको मौका मिल गया ये कहने का कि ये तो ऐसे होते हैं, इन्होंने तो करप्शन की, इन्होंने तो फ्रॉड किया, इन्होंने तो फलाने ने उसके साथ ऐसा कर दिया, इसका तो औरतों के साथ कोई ऐसा मामला था, इसका तो ऐसे था, क्या हुआ, एक परसेप्शन खराब हो गया दीन वालों का। तो बी वेरी केयरफुल, लिहाजा हिकमत भी चाहिए, मौजतुल हसना भी चाहिए, ऐसा जिदाल जिसके अंदर दूसरे की अना को नहीं जगाना, उनके साथ झगड़ों में नहीं पड़ जाना, उनके गिरेबान नहीं पकड़ लेने, उनके साथ कतअ ताल्लुक नहीं कर देना। कितने लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतअ ताल्लुक किया था, मस्जिद मक्का की बस्ती में, अबू जहल के साथ भी नहीं किया हुआ था, उससे ज्यादा क्या बड़ा होगा फिरौन, वो तो इस उम्मत का फिरौन था, लेकिन हमारे तो मुंह इधर फिर जाते हैं, इधर फिर, क्योंकि उस वक्त इसने ऐसे कर दिया था, जो आपकी बहस जो हो गई थी, सारी जिंदगी उसको दिल से छोड़ते ही नहीं, कीना दिल में रहता है, हालांकि वो अपने मुसलमान बहन भाई ही होते, इख्तलाफ हो गया, इतनी बात बढ़ गई कि बात ही बस खत्म। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही वहुवा आलमु बिल मुहतदीन। एंड में कह दिया गया, अल्लाह को पता है कौन है जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं और कौन है जो भटके हुए हैं। दाई दीन को भी तसल्ली के लिए फरमाया गया, क्योंकि अगर कोई इन असूलों पे चलते हुए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, लेकिन वो लोग नहीं समझते बात को, तो इंसान को सदमा होता है ना, इंसान होता है मैंने तो इतना कोशिश की, खैर ख्वाही भी है, पता नहीं क्यों नहीं असर लेते, और फायदा नहीं नजर आता, तो मायूसी ना तारी करो, काम को छोड़ के ना बैठ जाओ, आपका काम सिर्फ दावत देना है, आगे इसको इसके कुछ समर निकलता है, इसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, इसमें आपका दखल नहीं, फिर ये अल्लाह का काम है, वो ही जानता है कौन गुमराह रहेगा और कौन हिदायत पाएगा। आप अब फिक्र ना करें, आप बस अपना काम करते चले जाए ब्लॉग का, हिम्मत नहीं हारनी। बस दफा हमारी माशाल्लाह ये बहनें इतना जबरदस्त काम करती हैं, दावा का अल्लाह ताला इनको आफियत दे, सलामती के साथ रखे और इनको भी इन असूलों पे कारबंद करे। तो वो कहती हैं कि दूर से ही लोग देख के हमें इससे मुंह फोड़ फेर लेते हैं कि आ गई या नहीं, अभी हमें आके बताएंगी। तो गम ना ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो पता नहीं कितने लोगों ने मुंह फेरे, बल्कि नूह अलैहि सलाम का तो जहां से गुजरते थे लोग अपने कपड़े से मुंह छुपा लेते थे कि कहीं हमें देख ही ना ले, कहीं इधर कोई ना आ जाए। तो इस पे गम ना करें, लोगों के रवैयों पे, उनके बातों पे। और ये भी हमें यहाँ से पता चला कि उदू इला सबील रब्बे का, आप बुलाते रहें, ये ना सब काफी समझें कि हमने बस खुद कर लिया, हम गुनाहों से बचे हैं तो काफी है, अब औलाद जो मर्जी करे, गौर जो मर्जी करे, हमें उनकी कभी फिक्र ही ना हो, ये हमारा जिम्मा थोड़ी है। नहीं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, मगर इन असूलों के साथ उनको दावत देनी है। इसलिए इमाम शाफी मैंने फरमाया, जो शख्स किसी को उसकी गलती पर मुतनब्बे करता है, तो अगर उसको तन्हाई में करते हो, नरमी के साथ समझाते हो, तो ये नसीहत है, और अगर एलानिया लोगों के सामने उसको रुसवा किया, तो ये उसकी फसीहत है, यानी बेइज्जती है। और आजकल दूसरों के ऐबों को सब के सामने बयान किया जाता है, बल्कि अखबारों में इतहारों के जरिए सामने लाया जाता है। इसलिए कि हमें ये नहीं परवाह होती कि किसी की सलाह करनी है, हमें तो होता है कि इसको जरा बदनाम करें ना, इसका जरा हम बताते हैं, हम तो इसके कच्चे छठे खोलते हैं जरा। अल्लाह ताला हमें हिकमतें अता फरमाए, पता नहीं अल्लाह हमारे किरदार अखलाक से, हमारे मामलात से, या अल्लाह कोई दीन से दूर ना जाए, वरना हमारी ही पूछ हो जानी है इसके ऊपर। या अल्लाह हमें हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दावत का काम कर सकें। वा इन आकबतुम फआकिबू बिमिस्लि मा उकिबतुम बिह, और अगर तुम बदला लो तो बस बदला उतना ही ले सकते हो जितना कि आपके साथ ज्यादती की गई। इसका शाने नजूल पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो तीन आयात हैं, इनमें जो भी दाई है उसके लिए अहम हिदायत है, क्योंकि बाज औकात ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, कितनी आप उनके साथ नरमी करें, खैर ख्वाही करें, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं, वो बदजुबानी से ही नहीं बाज आते, वो जुबान दराजियां करने लगे, आपको इससे तकलीफ देते हैं, तो उसके बाद आप क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं अब हम ऐसा जवाब देंगे ना, इसको भी जरा मजा चखाते हैं, फिर उसको उससे भी बढ़ के जवाब देते हैं। तो बता दिया गया कि जितनी आपके साथ ज्यादती हुई उतना बदला तो ठीक है लेना जायज है, मगर याद रखना बदला लेने में अगर आप हद से बढ़ गए, जितना जुल्म आपके ऊपर हुआ उससे ज्यादा बदला ले लिया, तो फिर आप जालिम बन जाएंगे। ठीक है, तो बदला कितना ले सकते, उतना उतना बराबर सराबर, लेकिन अगर सबर करते हैं, वाले इन सबर तुम लहु खैरुन लिस्साबिरीन, तो सबर बहुत अच्छा है इंतकाम लेने से बेहतर। अजर आप हवा क्या तो पता होगा, एक आदमी ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, मेरे गुलाम है इधर उधर चीजें हेर फेर कर देते हैं, फिर मैं इनको साथ सख्ती करता हूँ और ऐसे करता हूँ इनको, तो मेरा मामला क्यामत के दिन क्या होगा? आपसे सर हमने फरमाया तराजू में रख दिया जाएगा जो उन्होंने किया तुम्हारे साथ और जो तुमने उनके साथ किया, अगर तुम्हारी उनके साथ जो तुमने उनको सजा दी या जो उनके ऊपर जबर किया वो ज्यादा वजनी हो गया, वो ज्यादा हो गया, तुम्हें उस दिन भुगतना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं अपने गुलाम आजाद करता हूं। ठीक है, तो यानी इंसान देखे कि जितना उसके ऊपर ज्यादती हुई है उससे कहीं मैं बढ़ ना जाऊं। असल में क्या होता है, जब हमारे साथ कोई ज्यादती होती है ना, तो हम इतने तहश में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है, इसने किया तो किया कैसे, इसने मैं इसको देख, मैंने अब इसको छोड़ना नहीं, मैंने। फिर इंसान जब जज्बात में आता है ना, शैतान उसके साथ खेलता है, फिर उसे वो करा लेता है कि जो जितनी उस पर जाती है उससे भी आगे बढ़ जाए। और आयात का शाने नजूर, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर मुफसरीन का ये ख्याल है कि ये जो आयत है ना, ये मदनी है। गजवा उहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे, और हजरत हमजा को आपको पता है ना कि कैसे शहीद किया गया था, उनका तो मुसला कर दिया गया। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि गजवा उहद में जब मुशरिकीन लौट गए तो सहाबा कराम में से 70 अकाबिर सहाबा थे, उनकी लाशें जब सामने आए तो उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सदमा था, हजरत हमजा की भी थी, और मुशरिकीन ने उनके साथ बहुत ही गलत किया था। उनकी लाश पे अपना गुस्सा इस तरह निकाला था कि उनकी नाक, कान और अज़ा काट लिए थे, और उनका पेट भी चीर दिया था उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजर को देख इतना सदमा हुआ, हे माँ बाप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, आपको इतना सदमा हुआ, आपने फरमाया कि मैं हमजा के बदले में मुशरिकीन के 70 आदमियों का इसी तरह मुसला करूंगा जैसे उन्होंने हमजा का किया। खुद सोचे ना कितनी बड़ी बात थी। जैसे होता है ना, लोग बाज़ किसी औरत के ऊपर, कोई आदमी गलत करता है, जुल्म करता है उसका शोहर, तो वो कहती है तेरी माँ, तेरी बहने, तेरी फलानी, तेरी भांजी भतीजी, तेरी सारी, पता के कभी कभी ये भी कह देती तेरी बेटियों को अल्लाह आगे दिखाए, ये उनके आगे आए ये। अब देखो एक जुल्म हुआ, इसने जुल्म किया, तुमने उसके पूरे उसको सारों को लपेट लिया पीछे, फिर कहीं आप किसी की नस्लों तक वो पहुंच जाते हैं, उसको आगे करते हैं, फिर कहीं किसी ने चोरी की, कुछ से कोई जुर्म किया, वो पुलिस उनके घर वालों को भी उठा के ले जाएगी, उनको मार मार के उनका भी आधा हाल बुरा कर दे। कोई कुछ कसूर किसका, और आप किससे ले रहे हो, और एक ने किया और आपने सारों को लपेट दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना कि एक के बदले में 70 का मुसला करूंगा, तो अल्लाह ताला तो इंसाफ फरमाने वाला, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अल्लाह हू अकबर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अखलाक का बेहतरीन नमूना है। आप अंदाजा करें कि मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, किसी इंसान को, गैर को भी इंसान देख लेना तो कहता है कि ये क्या हुआ, हमसे देखा नहीं जाता कभी। टीवी पे कई हालात दिखाते हैं इस तरह की जगहों के, जहां पे लोगों के साथ ऐसे कोई हालात हुए होते तो दिल दुखी हो जाता है, कहां अपना प्यारे और चचा अपने, और जो महबूब चचा, और उस वक्त साथ देने वाले जब कोई साथ देने वाला नहीं था। तो उस वक्त आपने जब ये फरमाया, अल्लाह ताला ने नहीं, बदला लेना तो बस उतना ही लेना जितना आपके साथ ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर सबर करेंगे ना, सबर अच्छा है, तो अफसल ने फरमाया अब हम सबर ही करेंगे, किसी से भी बदला नहीं लेंगे, और अपनी कसम का कफारा अदा कर दी। तफसीर मज़री में आता है, इसीलिए तो फतह मक्का के मौके पे ये मुशरिकीन तो थे ना सामने, और मगलूब थे, तो चाहते तो इनको किस तरह से भी करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर चुके थे सबर करने का, माफ कर दिया था इनको। बहुत बड़ा ये मकाम है, तो आला मकाम है, ठीक है। हम अगर इस पे नहीं भी पहुंच सकते तो कम से कम हम इस पे तो रहें कि उतना ही बदला लें जितना कि ज्यादती में, अगर इससे ज्यादा लिया तो एक वक्त होता है कि एक इंसान मजलूम होता है, दूसरा वक्त ये भी हो सकता है कि वही मजलूम जालिम बन जाता है जब बदले में लेने में वो हद से बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह आप देखते हैं, ये तो यानी किसी ने मुझे बताया वाकया, उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये उनके पास ऐसे केसेस आते हैं, एक को एक ने कत्ल किया, उसके बदले में उन्होंने उसके 4 कत्ल कर दिए, एक ने एक को जख्म लगाया, उसे कहा हाथ या पैर काट दिया, तो उसने उसके बदले में उसको कत्ल ही कर दिया दूसरे को जाके, उनके फैमिली वालों ने। इस तरह की जहालतें हमारे यहाँ बहुत चलती हैं, और हर मामले में, ये सिर्फ कत्ल वारत वाले, मुजरिमों वाले, हर मामले में हम कहते हैं कि इसने पत्थर का जवाब ईंट से, हम कहते हैं इसने मुझे एक कहा मैं तुझे 10 सुनाऊंगी, इवन सुनाने में भी उसने आपको एक सुनाई है, आप उतनी एक उसको अगर कह देंगे ना तो तब बराबर सवाल मामला हो गया, दुनिया में खत्म हो गया, बस ठीक है, अब ना आपके ऊपर कुछ और ना उसको उससे भी आपने बदला ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा इसने एक सुनाई है, मैं जब तक इसको चार ना सुना दूं ना, मुझे चैन नहीं आना। तो अब आप जालिम है और वो मजलूम है। अल्लाह के यहां तो तराजू है, देखें उसमें तोला जाएगा। उस तराजू में जिसका जिसकी ज्यादती ज्यादा निकली उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन होता यही है। या हम कहते हैं कि माफ करना तो खैर दूर की बात है, हम कहते हैं जो बदला भी लेना ना हम ज्यादा करके करेंगे, हम इसको मजा चखाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो जब इंसान इस जज्बात में आ जाता है तो वो उससे ऊपर चला जाता है। और नबी का मकाम तो बहुत ऊंचा है इससे। तो उन्होंने फिर सबर करके भी दिखाया। और ये कहना, मेरा बोलना और आपका सुनना, ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, लेकिन जिसके साथ कुछ ऐसा होता है ये बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। इंसान अपने आप को कंट्रोल करके उतने पे रखे ना, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि वो ज्यादती खुद ना कर बैठे। सबर का मकाम तो खैर वो तो बहुत ही ऊंचा है, वो तो अल्लाह ताला, देखिए आगे आ रहा है ना, वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्ला, सबर कीजिए और आपका सबर अल्लाह ही के साथ है। यानी सबर तो अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह ताला ही किसी को तौफीक दे तो वो सबर कर सकता है। सबर अल्लाह ताला की मदद से ही हो सकता है। आपका सबर, इसमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए तो अल्लाह ताला सबर दे देता है। देखिए हदीस है ना कि जो सबर करना चाहता है अल्लाह उसको सबर दे देता है। अगर वाकई इंसान चाहता है ना, पहले तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे मकाम पर जहां पे जैसे ये ज्यादती हुई थी, ये ठीक है जंग के अंदर कत्लो वारा तो होता था, लेकिन मुसला करना, अबू सुफियान ने कहा था ना कि मैंने नहीं इसका हुक्म दिया था, क्योंकि ये भी एक उसमें भी एक गलत चीज समझी जाती थी। पता था उनको कि ये बहुत गलत है, को जंग में जंग हो रही है ठीक है, कोई मरेगा कोई जिएगा, लेकिन इस हद तक पहुंच जाना या एक की चार का बदला लेना, ये जब ज्यादती होने लगे और इंसान अपने आप को रोक लेना कि नहीं मैंने एक का बदला एक ही लेना है, एक का बदला चार नहीं वापस देना, उसने एक किया मैंने एक से लेना, ये भी सबर के साथ ही हो सकता है। और माफ करना इससे ऊपर का दर्जा है, तो ये भी सबर इसके लिए चाहिए। सबर तहमुल नहीं होगा तो फिर मैंने जैसे आपको बताया इंसान आपे से बाहर हो गया, कहता नहीं वो मैं जो चोट लगी है मैं उससे डबल इसको चोट दूंगा, समझ आ रही बात, इसने मुझे जो दुख दिया मैं इसे डबल इसको दुख पहुंचाऊंगा, इसने मुझे जो तकलीफ दी है मैं इसे डबल करूंगा, ये होता है। इसके लिए सबर क्या, खुद को रोक लेना, इसके लिए भी इंसान खुद को रोके, वस्बिर सबर कीजिए। और सबर में इस्तकामत का माना भी आता है, जम जाए। वमा सबरु का इल्ला बिल्ला, वला तहसन अलैहिम वला तकुफी दैक मिम्मा यमकुरून, और ना आप गम करें इन पर और ना आपके अंदर घुटन हो, तंगी हो इससे जो वो चाले चले। इंसान को गम तो होता है ना, इतना गम होता है कि इंसान कुछ करने के काबिल ही नहीं रहता, उसकी सारी एनर्जी गम। ऐसी चीज है हुज़्न जो होता है ना, वो ऐसी चीज है कि इंसान को बिल्कुल बिस्तर पे डाल देता। तो आप गम ना करें, ये अल्लाह ताला की तसल्ली है, लम तकुफी दैकन, और आपके अंदर घुटन ना हो। पता है जब गम होता है ना तो अंदर भी दिल घुटता है। फिक्र ना करें उन चालों से जो जो चल रहा है, जो बुरा करेगा वो अपने लिए खुद गड़ा खोदता है। तो क्या बताया गया, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर मामला डाल दो, तुम अपना रास्ता चलते जाओ, तुम घुटो नहीं। क्योंकि इंसान नेकी करने के लिए भी पता है ताकत चाहिए होती है। जो इंसान गम में घुलता रहे उसकी तो नेकी करने की भी ताकत नहीं रहती, उसके लिए नमाज भी खड़े होना मुश्किल हो जाता, वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहता, वो घुलता रहता है। इसीलिए आपने देखा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं और दिल की घुटन खत्म ही नहीं होती। तो क्या किया जाए फिर? तो उसके लिए बताया गया कि अल्लाह पे छोड़ दो, आप ना घुटो, आप ना इस गम के अंदर घुलो। ये गम देखे, गम भी इंसान को कहते हैं ना, गम में घुल गया, वाकई इंसान घुल जाता है गम में, वो किसी काबिल नहीं रहता। तो इसलिए बता दिया गया, नहीं आप गम ना करें, आप ना अपना सीना तंग करें, क्योंकि एक अल्लाह की जात है। तो पहले सबर की तलकीन, फिर ये बता दिया गया सबर की तौफीक अल्लाह देने वाला, वरना सबर मुमकिन नहीं है इंसान के लिए। अल्लाह तौफीक देगा तो सबर आएगा, तो उससे मतलब सबर उससे मांगे फिर। और फिर मुशरिकीन जो मुखालफत कर रहे हैं, जो दुश्मनियां कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो तकलीफ आपको पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर गम ना करें। दाई को ये सिखा दिया गया, और जिंदगी के हर मौके के लिए ये नसीहत बड़ी कारगर है। अगर इंसान गम में पड़ा रहे, गुस्से में पड़ा रहे, वो फिर ना तो सही सोच सकता है, ना सही कुछ एक्शन ले सकता है, फिर वो किसके कंट्रोल में चला जाता है? शैतान के। और गम भी ज्यादा हो जाए तो देख लेना फिर क्या इंसान की हालत हो जाती है। आप देख लें, आप एक दिन ज्यादा रो लेते हैं, उसके बाद हिम्मत ही नहीं रहती, बस ऐसे बिल्कुल लाचार से होके बैठ जाते हैं, सर दुखने लगता है, वो बहुत इंसान वीक फील करने लगता है। तो और जो गम है वो अंदर अंदर खाता है, वो छा जाता है दिल के ऊपर, फिर दिल तंग होने लगता है और इंसान परेशान होता है, मेरे खिलाफ चालें चल रहे हैं, मेरे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं। तो अल्लाह पर मामला छोड़ दो, इन अल्लाह मा अल्लज़ीन तक़ू, अल्लाह साथ है ना, वो साथ है, लेकिन किन के? सब के नहीं, उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो कहते हैं कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना मुझसे हो जाए, कोई ऐसा कदम ना उठा लूं जिसमें मेरा रब नाराज होता, उनके साथ अल्लाह है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि अभी आपके साथ अल्लाह है, और रहती दुनिया तक जो लोग मुत्तकी होंगे उनके साथ अल्लाह है, जो फूंक फूंक के कदम रखने वाले होंगे, जो ये कहेंगे कि अल्लाह ना नाराज हो जाए, मुझसे कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए, कोई ऐसी नाफरमानी, कोई ऐसी ज्यादती ना हो जाए कि अल्लाह नाराज हो, और जो ये कहेंगे कि नेकी का काम चाहे कितना ही मुश्किल हो मेरा रब उससे राजी होता है तो मैंने वो छोड़ना नहीं। ये मुत्तकी होते हैं ना, तो जो डर डर के चलने वाले होते हैं अपनी जिंदगी में, बच बच के चलने वाले होते हैं अपनी जिंदगी में गुनाहों से, ज्यादतियों से, गलत कामों से, नाफरमानियों से। ऐसा नहीं कि मुत्तकी से कभी गलती होगी नहीं, होती है, उससे भी होती है, वो भी फिसल सकता है, मगर ये कॉन्शियसनेस होना जरूरी है कि मैंने बचना है, तभी तो बच सकेंगे ना। और जो लापरवाह होते हैं, हमें नहीं परवाह, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, जो ऐसा रवैया रखते हैं वो तो मुत्तकी नहीं होते। ठीक है, तो जो लोग मुत्तकी हैं उनके साथ अल्लाह है, वो लदीना हुम मोहसिनून, और मोहसिन के साथ भी अल्लाह है। मोहसिन कौन है? वो जो एक्सीलेंस पे मामला करता है, हालात कुछ भी हो वो कहता है मैंने अपना मामला बेहतरीन रखना है। एक होता है ना गुड, एक होता है बेटर, और एक होता है बेस्ट। बेस्ट करने वाला मोहसिन, हक से ज्यादा देने वाला मोहसिन, वो इंसान मोहसिन है जो हुस्न से काम करता है। हुस्न ब्यूटी, उसके काम में ब्यूटी है, जिसको देख के सबको बड़ा अच्छा काम है, बड़ा खूबसूरती से काम किया है। ऐसा इंसान ज्यादती करने वाला इंसान थोड़ी मोहसिन होता। मोहसिन वो है जो ये जैसे एहसान की तारीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई, तो क्या फरमाए, जो ऐसे ही इबादत करे जैसे वो अल्लाह को देख रहा है, और वो ये नहीं कर सकता तो ये तो कम से कम हो कि अल्लाह उसे देख रहा है, यानी वो हर काम को इस तरह से करता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये एहसास है तो फिर काम में भी खूबसूरती आ जाती है। और अल्लाह का साथ होना क्या मुराद है? ये नहीं कि फिजिकली, नऊज़ु बिल्लाह, मतलब है अल्लाह की नुसरत, उसकी मदद, उसकी बैकिंग है, उसके साथ उसकी सपोर्ट है इस बंदे के साथ। इंसानों में भी कई दफा कह देते हैं ना, आप फिक्र ही ना करें जी, हम आपके साथ हैं। वो मतलब नहीं कि वो आपके घर में आपके साथ आके बैठ जाए, आपके साथ है मतलब उसकी सपोर्ट है आपके साथ। जिसको अल्लाह की सपोर्ट मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो जिसके साथ अल्लाह हो जाए फिर वो दूसरे के मकर से क्यों डरे, फिर किसी का मकर कैसे कामयाब हो सकता है। वो क्या अल्लाह तआला ने फरमाया ना, आप घुटन ना करें, आप गम ना करें, तो अब किसी के कहने से गम नहीं दूर होता। लेकिन जब कह दिया इन्नल्लाह माल्लदीन तक़ौ वल्लदीन हुम मुहसिनून, तो इंसान के दिल को करार आ जाता है, क्यों ना गम करूं, क्यों ना मेरा दिल घुटे, इसलिए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ, क्योंकि मैं मोहसिन हूं, क्योंकि मैं मुत्तकी हूं। ठीक है, बहुत प्यारी आयात है और बहुत प्यारा मैसेज है। अल्लाह ताला इनके ऊपर अमल करने वाला हमें बनाए, अल्लाह ताला इन आयात के ऊपर हमें चला दे, इनको याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें मुश्किल हालात में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला कोई हम पे ज्यादती करे तो हम वो ना बने कि जो ज्यादती का बदला उससे ज्यादा लेने वाले हों, और ये ना हो कि हम जालिम बन जाए। अल्लाह ना हमें मजलूम बनाए और ना जालिम बनाना, दोनों ही चीजें मुश्किल हैं। अल्लाह ताला उनकी सफ में हमें ना खड़ा करे, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो जाए, और अल्लाह ताला हमें इन तमाम आयात पर जो शुक्र गुजारी का मैसेज है, और जो तौहीद का मैसेज है, और जो दावत इल्लाह के का मैसेज देना लोगों को, इसके अंदर जो असूल बताए गए हैं उनके ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस सूरत को, ये बड़ी खूबसूरत सूरत है, इस सूरत को पढ़ के बहुत सारी चीजें हमने सीखी। अल्लाह ताला जो सीखी हुई चीजें इनको याद रखना और इन पर अमल करने वाला हमें बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.